राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम।
कल श्री लक्ष्मण चरित्र पर पहली चर्चा करते हुए हमने उनके तात्विक स्वरूप को देखने का प्रयास किया था। गोस्वामी जी कहते हैं आधिदैविक दृष्टि से वे सहस्र शीर्ष शेष हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से वे मूर्तिमान काल हैं। काल की विलक्षणता यह है कि वह रचना भी करता है और नाश भी करता है। सृष्टि और ध्वंस ये दोनों पक्ष काल में दिखाई देते हैं। इसीलिए लक्ष्मण जी के चरित्र में कुछ विरोधाभास सा दिखाई देता है। जब तक यह पक्ष हमें ज्ञात नहीं होता तब तक लक्ष्मण जी के चरित्र के प्रति न्याय नहीं हो पाता और हम उनके चरित्र के प्रति भ्रांति से पीड़ित होते हैं। ऐसा लगता है कि वे क्रोध करते हैं, वे अनुचित बात कहते हैं। ऐसा लगता है कि वे अशिष्ट हैं, परंतु वस्तुतः देखा जाए तो चिकित्सा की दृष्टि से श्री लक्ष्मण जी का यह क्रोध कार्य है और उसी को आपके सामने कुछ उदाहरणों के माध्यम से रखने की चेष्टा की जाएगी। कल हम कह रहे थे सुग्रीव की चिकित्सा अभीष्ट थी, लक्ष्मण जी के माध्यम से भगवान श्री राम तीन लोगों की चिकित्सा कराते हैं। एक हैं जनक जी, दूसरे हैं परशुराम जी और तीसरे हैं सुग्रीव जी। स्वयं भगवान इन तीनों की चिकित्सा नहीं कर पाते और ऐसे ही जब हनुमान जी की भी चिकित्सा करनी पड़ी तो श्री राम वह कार्य स्वयं संपन्न नहीं कर पाए। उन्होंने भरत जी के पास हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी की चिकित्सा कराई। यह भी आप सभी जानते हैं हनुमान जी के जीवन में भी रोग आया था थोड़ी देर के लिए, भले हम कहें कि वह एक लोक संग्रह का कार्य था परंतु फिर भी लौकिक दृष्टि से देखने पर हनुमान जी में वह रोग अंकुरित हुआ और चिकित्सा का कार्य श्री भरत जी करते हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए उस समय जब मेघनाथ लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाया, हनुमान जी उठा करके ले आते हैं लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम के पास। उसी प्रकार जैसे उन्होंने रोगी को उठा लिया, वे चिकित्सक को वैद्य को उसके भवन के साथ उठा करके लाते हैं और दवा लाने के लिए भी उन्हें ही जाना पड़ता है। और हम पढ़ते हैं कि वे समूचा पर्वत खंड ही उठा करके लाते हैं। उनके मन में यह तनिक सा अभिमान कहीं पर आ गया था कि रोगी को उठा करके लाने का कार्य भी मैंने किया, वैद्य को लाने का कार्य भी मेरे द्वारा संपन्न हुआ और औषध को लाने का कार्य भी मैं ही कर रहा हूं। यह जो रोग आता है उनके जीवन में उसकी चिकित्सा भरत जी के द्वारा होती है यह हम देखते हैं। जब वे आ रहे हैं आकाश मार्ग से, मन में इच्छा हुई कि जरा देखते जाएं अयोध्या में किस प्रकार कैसा दिखाई देता है। आप पढ़ते हैं कि भरत जी वहां पर निगरानी कर रहे हैं रात्रि में, पुरवासी सोए हुए हैं निश्चिंत और राजा वहां पर घूम घूम करके रखवाली कर रहा है नगर की। और फिर आप पढ़ते हैं कि उन्होंने अनुमान से देखा कि कोई राक्षस जा रहा है आकाश मार्ग से, बिना फल का बाण मारते हैं, हनुमान जी नीचे गिर पड़ते हैं मूर्छित होकर के। और यह भी संकेत हमें गीतावली रामायण में मिलता है कि वह जो पर्वत था वह पर्वत अधर में ही टगा है, पवन राक्षो गिरी जहां पर कहा है। तब बाद में हनुमान जी को यह लगा, उनका जब रोग दूर हुआ, मैं जो सोचता था कि मैं ही पर्वत का वहन करने वाला हूं सो कितनी गलत बात है, वह तो अधर में टंगा है। यदि मैं पर्वत को उठाने वाला होता तो मेरे गिरने के साथ यह भी गिर पड़ता, पर्वत तो अधर में टंगा है, कुधर राख्यो गिरी जहां पर कहा गया है पवन राख्यो, तो यह जो पवन राख्यो गिरी, तो यही बात यहां पर हम देखते हैं कि तीनों की चिकित्सा प्रभु स्वयं नहीं करते हैं, लक्ष्मण जी के माध्यम से सुग्रीव की चिकित्सा कराते हैं, जनक जी की भी चिकित्सा कराते हैं और परशुराम जी की भी चिकित्सा कराते हैं। सुग्रीव रोगी है यह बात समझ में आती है, परशुराम भी रोगी है यह बात भी हम एक बार समझ लेते हैं, पर महाराज श्री जनक जो ज्ञान के मूर्तिमान रूप वैराग्य के ऐसे रूप, ये भी कुछ रोगी है यह बात समझ में नहीं आती। पर जब हम प्रसंगों को पढ़ते हैं, पुष्पवाटिका का प्रसंग, धनुष यज्ञ का प्रसंग, तो धनुष यज्ञ के प्रसंग के माध्यम से जनक जी के रोग का पता चलता है और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के माध्यम से उनका भी रोग दूर करते हैं। तो लक्ष्मण जी हैं सफल चिकित्सक, वे जीवों के आचार्य हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में वे हैं जीवाचार्य और इन तीनों की सफल चिकित्सा करते हैं। तो कल हम कह रहे थे जब प्रभु ने देखा कि सुग्रीव ने उनकी सुध विसार दी है तो वे लक्ष्मण जी की ओर ताकते हैं, लक्ष्मण जी भाव पूरा समझ लेते हैं और वे जाते हैं। प्रभु ने हंसते हुए कहा कि देखो मारना नहीं है, बस भय दिखाई ले आवहु, डर दिखा दो सुग्रीव को, वैसे भी बहुत डरपोक है, थोड़ा सा डर दिखा दो, वह चला आएगा डर दिखा करके मेरे पास ही लाना है। प्रभु डर दिखा करके अपने पास ही तो खींचते हैं। जैसे माता पीटना चाहे, वह तो माता ही आंचल पकड़ करके झूलता है, तो ठीक यहाँ पर प्रभु ताड़ना देते हैं, मानो ताड़ना देकर के यह संकेत देते हैं कि जीव तुम मेरे पास आ जाओ। श्री राम कृष्ण देव कथा कहते हैं रामायण की, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ पंपा सरोवर के तीर पर पहुंचे, स्नान करना है। उन्होंने उतारे अपने वस्त्र, तरकस उतार दिया और जो हाथ में बाण था उसे भूमि में गड़ा दिया। स्नान इत्यादि करके जब वे बाण को निकालते हैं तो देखते हैं कि बाण के फल में रक्त लगा हुआ है। हरे हरे लक्ष्मण, यह कौन सा जीव बिन गया है, जरा देखो तो। और फिर वहां पर मिट्टी साफ की गई तो देखा गया कि एक मेंढक मुमूर्ष होकर के पड़ा है, रक्तात तो हो गया है। श्री राम ने कहा, वाह तुम तो ऐसे बड़े टर्र टर्र करते रहते हो, जब मेरा बाण गया और बाण का फल तुम्हें छूने लगा, अगर तुम टर टर कर देते तो मैं समझ जाता तुम हो, तो मैं उसे जमीन में नीचे नहीं गिराता। धीरे क्षीण स्वर में मेंढक ने कहा कि प्रभु टर टर तो करता हूं, जब आपत्ति दूसरी जगह से आती है तो टर टर करके तुम्हें बुलाता हूं, पर जब मैंने देखा अपनी भूमिका संपन्न करते हैं, डर पैदा हो गया। सुग्रीव जी ने कहा हनुमान जी से कि जाओ तारा को लेकर के जाओ, सुन हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समझाओ कुमारा, जाओ समझाओ। और आते हैं हनुमान जी, हम पढ़ते हैं हनुमान जी आते हैं। और कल हमने यह भी कहा था कि प्रभु यह जो काल को भेजते हैं तो काल में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, माने प्रभु जब काल को भेजते हैं, कोई बाण भेजते हैं, तो उनके पास पक्षपात नहीं है, प्रभु का संकल्प ही काल है। तो यह जो संकल्प है, यह जो बाण है, वही किसी के लिए काल का एक रूप होता है और किसी के लिए काल का दूसरा रूप होता है, यह भी बात कल आपके समक्ष मैंने कही थी। जैसे सिंह धनुष सायक संधाना जयंत के संदर्भ में, वही सिंह उस सिंह से प्रिया जी के लिए वे माला गूंथ रहे हैं, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति सिंह के द्वारा हो रही है, और वही सिंह जयंत के लिए काल बन रहा है। तो प्रभु के पास ऐसे कोई दो शस्त्र नहीं है अलग अलग, वही एक है, वही संकल्प से काल बनता है, वही संकल्प से श्रृंगार का हेतु बनता है, यह भी बात कल आपके समक्ष रखी गई। तो प्रभु के पास ऐसी कोई दो वस्तुएं नहीं है, एक ही वह है, और वही भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्यों के कारण दिखाई देता है। तो हम यह कह रहे थे, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, वे कहते हैं प्रभु मैं अब आपके रहस्य को समझ गया। प्रभु ने पूछा कि तुमने क्या रहस्य समझा? यही समझा प्रभु मूर्ति कृपामयी, आपकी जो मूर्ति है वह कृपामयी, आप कृपा से बने हैं। क्या तात्पर्य है? कृपा से बने हैं, जैसे हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, प्रभु का विग्रह है, एक हाथ में गदा है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में कमल है, चौथे में वे अभय दान दे रहे हैं, तो भक्त कहता है प्रभु आपके चक्र को देख करके डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपका चक्र न तो कठोर न तो कोमल है, और उसी प्रकार यह जो दिखने वाला कमल है वह न तो कठोर है, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही धातु से बने हैं। ये दोनों के दोनों, जैसे हम देखते हैं वे मंदिर में गए, वहां पर संगमरमर की प्रभु की प्रतिमा है, वहां पर हम देखते हैं कि चक्र भी संगमरमर से बना है, कमल भी संगमरमर से बना है, एक ही वस्तु से ये दोनों की दोनों वस्तुएं बनी हैं। और इसीलिए भक्त कहता है प्रभु जब मैं आपकी ओर देखता हूं तो मैं तो यही देखता हूं आप कृपा से बने हैं, इसलिए आपका चक्र भी कृपा का है, आपका कमल भी कृपा का है, इसलिए प्रभु चक्र देख करके मुझे भय की अनुभूति नहीं होती है। तो ठीक यही बात है कि प्रभु ने सींक तो बाण बना करके, धनुष बना करके, बाण बना करके छोड़ दिया अभी मंत्रित करके, पर यहां पर कह रहे हैं कि मुझे उससे डर नहीं लगता, प्रभु के पास ऐसी दो वस्तुएं नहीं है, वे तो कृपा घन मूर्ति हैं। हनुमान जी यह बात समझ जाते हैं, और इसलिए जब लक्ष्मण जी के पास वे जाते हैं तारा को लेकर के, उन्हें भय नहीं लगता है, क्योंकि वे ईश्वर के स्वरूप को समझ करके बैठे हुए हैं, वे जानते हैं काल का स्वरूप क्या है, और वे गए तारा को साथ में लेकर के, और क्या करते हैं, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना, चतुराई करते हैं। तारा को साथ में लेकर के गए, तारा सहित जाई हनुमान,
तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना,
प्रभु के चरणों की वंदना, वहां पर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करते हैं, और वंदना करके प्रभु सुजस बखाना, भगवान श्री राम के सुयश का बखान करने लगते हैं। यह उनकी बुद्धिमत्ता है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, वे जानते हैं कि लक्ष्मण जी क्या सुनना पसंद करते हैं। यह बड़ी विलक्षण बात है श्री लक्ष्मण जी के साथ, कभी उन्होंने अपनी प्रशंसा सुननी नहीं चाहिए, प्रभु की प्रशंसा ही उनके लिए सब कुछ है। और जब प्रभु की प्रशंसा करते हैं हनुमान जी, भूल जाते हैं, लक्ष्मण जी का क्रोध तो उतर ही जाता है, पर वे यह भूल जाते हैं कि मैं क्या उद्देश्य लेकर के आया था, सुग्रीव को डराने आया था, यह सब कुछ वे भूल गए। और तब फिर वे विनती करते हैं, हनुमान जी विनती करते हैं, तारा विनती करती हैं,
कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए,
विनती की, कहा कि चलिए महाराज मंदिर में चलिए, भवन में चलिए, ले आते हैं और पलंग में बिठाते हैं। अटपटी बात तो लगती है, जैसे साधु गृहस्थ के घर में जाता है तो आप एक आसन देते हैं, बिठाते हैं, पलंग में नहीं बिठाते हैं। पर वहां पर ये ऐसे हैं लक्ष्मण जी जो हरदम जागने वाले, प्रभु सोते हैं तो लक्ष्मण जी जागते हैं, प्रभु निद्रा में हैं, जागने लगे बैठ वीरासन, ऐसे लक्ष्मण जी हैं जो कभी सोते नहीं हैं, तो ऐसे लक्ष्मण जी को पलंग पर बिठाते हैं, क्या दुख हो सकता है। तो वहां पर संकेत दिया है गोस्वामी जी ने, कहा है मानो हनुमान जी भी संकेत से कहते हैं, कहते हैं महाराज क्या किया जाए, यहाँ तो सब सोने वालों का ही नगर है, बैठने के लिए आसन तो है ही नहीं, बैठते भी हैं तो पलंग पर ही जाकर के बैठते हैं, पलंग मानो सोने का प्रतीक, कि मनुष्य जहां पर जाकर के सोता है आराम करता है, तो यहाँ पर तो सभी आराम करने वाले लोग हैं। और इसीलिए वहां पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं,
मोहनिसा सब सो बनी हारा, देखिए सपन अनेक प्रकार,
अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं, मोह निशा में सभी सोए हुए हैं, तो महाराज यहाँ बैठने के लिए आसन है ही नहीं, इसलिए आपको पलंग पर ही बैठना पड़ेगा। और दूसरा तात्पर्य कि महाराज देखिए आप कौन है, मानो संकेत दे रहे हैं गोस्वामी जी कि अगर कमरे में एक सांप निकल जाए तो मनुष्य की नींद वैसे ही गायब हो जाती है। मालूम नहीं आप लोगों को अनुभव है या नहीं, पर हमें तो अनुभव है कि जहां झोपड़ी में सांप निकला डर ही लगता है कि सांप कहीं काट तो नहीं देगा, रात भर नींद नहीं आती, और अगर कोई बिस्तर में सांप देख ले तब तो जान ही सूख जाए, फिर तो कहिए कि उसको नींद आएगी ही नहीं। अब यहाँ पर तो सहस्र शीर्ष शेष बैठे हैं पलंग पर जाकर के, ऐसे सहस्र शीर्ष जब शेष वहां पर जाकर के बैठ गए तो फिर मनुष्य को कभी नींद आ सकती है, यह तात्पर्य। हनुमान जी पलंग पर बिठाते हैं, कहते महाराज आप पलंग पर बैठिए, और यह जो मोह निशा में ये सारे के सारे सोए हुए हैं, आप आकर के विराजेंगे तो इनकी नींद कट जाएगी, और सचमुच ये जो है सुग्रीव जी उनकी नींद ऐसी कटी कि फिर कभी वे नींद के द्वारा ग्रस्त नहीं हुए, यह जीवन में दिखाई देता है। तो ऐसे लक्ष्मण जी हैं हरदम जागने वाले। जब अंगद को दूध बना करके प्रभु ने भेजा था रावण के पास, तो रावण ने अवहेलना के शब्दों में कहा था, तुम लोगों के पास कौन है, तुम्हारा वह स्वामी तो अपनी पत्नी के विरह में दुखी हो रहा है, और उसका जो छोटा भाई है वह अपने बड़े भाई के दुख के कारण कातर हो रहा है, देखो कुंभकर्ण असबंधु मम, मेरे तो कुंभकर्ण जैसा भाई है। तो मानो प्रभु का संकेत दिया है कि जब रावण अपने 6 महीने सोने वाले भाई पर इतना गर्व कर सकता है, तो मेरा यह भाई तो ऐसा है जो कभी सोता ही नहीं, मैं कितना गर्व ना करूं, यह भाई जिसको कभी नींद नहीं, जिसकी पलकों में जिसके कभी नींद आती ही नहीं। तो ऐसे ये लक्ष्मण जी हैं, जाते हैं सुग्रीव की चिकित्सा करते हैं, सफल चिकित्सा करते हैं। और जैसा मैंने अभी आपके समक्ष कहा कि फिर सुग्रीव जी कभी जीवन भर नहीं सोते हैं, वह जो प्रमाद कटा, वह जो नींद कटी, वह हरदम के लिए कट गई। अब ये जो लक्ष्मण जी हैं, जैसा मैंने कहा, सुग्रीव की चिकित्सा की, जनक की चिकित्सा करते हैं। लगता तो है लक्ष्मण जी क्रोधी हैं, और क्रोध अनर्थ का मूल है यह भी लगता है। परंतु एक बात हम थोड़ा सा गहराई से चिंतन करके देखें कि क्रोध कभी क्या सार्थक भी होता है। वैसे तो क्रोध अनर्थ की जड़ है, पर क्रोध कभी सार्थक होता है? हम कहेंगे हाँ। लक्ष्मण जी ने बता दिया कि क्रोध भी सार्थक होता है। ये दो क्रोधी हमें दिखाई देते हैं रामचरितमानस में, विशेष करके धनुष यज्ञ के प्रसंग में। एक तो लक्ष्मण जी हैं और दूसरे हैं परशुराम जी। ये दोनों क्रोधी के रूप में दिखते हैं, परंतु दोनों के क्रोध की विचित्रता है। जैसे अगर थोड़ा सा विचार करें तो परशुराम जी क्रोध करते हैं इसलिए कि धनुष टूट गया। उनका जो क्रोध है उसको हम कहेंगे भूतवादी, अतीत में घटना हो चुकी, जो घटना हो चुकी उस पर हम क्रोध कर रहे हैं। तो अतीत में जो घटना घट चुकी है उस पर क्रोध करने से लाभ क्या है? अब वह धनुष जो टूटा है वह जुड़ेगा तो नहीं। और यह बात लक्ष्मण जी कहते भी हैं, जब परशुराम से वे वार्तालाप कर रहे हैं तब, तो यह एक भूतवादी क्रोध होता है, और दूसरा है भविष्यवादी क्रोध। यह जो क्रोध है लक्ष्मण जी का वह भविष्यवादी है। वे क्रोध करते हैं, उस क्रोध के कारण हम देखते हैं कि जनक जी पहले तो संकुचित होते हैं, फिर श्री राम के भीतर में प्रेरणा आती है धनुष को तोड़ने की। तो एक क्रोध वह होता है जिसको हम भविष्यवादी कह दें, जो कार्य कराएगा, किसी कार्य को संपन्न कराएगा। और दूसरा क्रोध होता है भूतवादी, जो बीती बातों पर क्रोध किया करता है। तो परशुराम जी इस दूसरे के उदाहरण है, बीती बातों पर क्रोध करने वाले के, और लक्ष्मण जी हैं कि जो कुछ संपन्न करना है भविष्य में उसके लिए वे क्रोध करते हैं। और वे हम देखते हैं श्री राम को किस प्रकार प्रेरणा देते हैं। और लक्ष्मण जी से क्रोध करना हमें सीखना भी चाहिए कि कैसे हम क्रोध करें। उन्होंने अतीत पर कभी क्रोध नहीं किया, हरदम जब भी क्रोध किया है तो भविष्य के लिए क्रोध किया है। आप वहां पर भी देखेंगे, वह प्रसंग भी लेंगे, जब समुद्र से रास्ता मांगा जा रहा है, वहां पर भी लक्ष्मण जी को रोष आता है। हर समय कहेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं राइचुअस इंडिग्नेशन, इनका जो क्रोध है राइचुअस है, वह धार्मिक क्रोध है या धर्मयुक्त क्रोध है, जिससे कार्य की प्रेरणा मिलती है। जब समुद्र से रास्ता मांगा जा रहा है उस समय भी लक्ष्मण जी के क्रोध करने पर ही अंत में प्रभु ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया था और सागर पर संधान करके छोड़ा था। तो यह बातें हमें लक्ष्मण जी के चरित्र के माध्यम से दिखाई देती हैं। अब धनुष यज्ञ का प्रसंग देखें, जनक जी भी रोगी हैं। क्यों रोगी हैं? अभी आपके समक्ष विचार करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कह दिया, आकर के घोषणा कर दी, जब धनुष को ये राजा लोग हिला नहीं सके, उन्होंने आकर के कहा था जो धनुष को उठा देगा, तोड़ देगा, तो मेरी कन्या सीता उसका वरण करेगी, पर कोई नहीं उठा सका। तो फिर वे क्षुण्ण होकर के जोरों से कहते हैं, अब जनी को माख है भटमानी, बीर विहीन मही मैं जानी, तजहुं आस निज निज गृह जाहूं, लिखान विधि वैदेही विबाहूं। कह रहे हैं वे, सुकृत जाय जौ पनु परिहरऊं, कुंवरि कुआरि रहऊं का करऊं। ये बातें कह दी, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब यह जो पृथ्वी है वीरों से खाली हो गई है, यही मैं समझ लूं, ऐसा कोई भी उद्भट वीर नहीं आ सका जो मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति कर सके। अब आप लोग आशा छोड़ दीजिए, अपने अपने घर चले जाइए, मैं यही मान लूंगा कि विधाता ने मेरी लड़की का विवाह नहीं लिखा है। क्या करूं, मैं अपने प्रण को छोड़ करके भी उसका विवाह कर देता, पर उससे मेरा पुण्य चला जाएगा, रहेगी कुंवारी मेरी कन्या, चिंता नहीं है, ठीक है, मैं उसका विवाह नहीं करूंगा। अब यह सुनते ही बौखलाने वाले कौन है? लक्ष्मण जी बौखलाते हैं, और बौखला करके क्या कहते हैं आप जानते हैं। अब वो कह ही रहे, वो तो कह देते हैं, जोरों से उठ करके वे ही कहते हैं और तो कोई कहते नहीं।
कही जनक जस अनुचित बानी।
प्रभु श्री राम तो चुपचाप बैठे हैं, उनमें तो न तो विकार है न तो कुछ है, वे तो चुप ही बैठे हैं। लक्ष्मण जी उठ करके कहते हैं,
कही जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मनि जानी।
रघुकुल मन यहाँ पर है, विराजित है, उनके विराजित रहते हुए जनक ने इस प्रकार की अनुचित वाणी कह दी। और फिर वे प्रभु की ओर देख करके कहते हैं,
जो तुम्हार अनुशासन पामो कंदु कई व ब्रह्मांड उठावो।
आपका अनुशासन माने हर समय आप देखेंगे कि लक्ष्मण जी कितने अनुशासित हैं। जब भी वे कहते हैं मानो रोष में ही कह रहे हों, पर उनका रोष कितना मर्यादित है। कह दिया जनक जी ने कि वे अमर्यादित हैं। पुरवासियों ने कहा कि यह छोटा कुमार बड़ा खोटा है। कह दिया परशुराम ने कि यह बड़ा अशिष्ट है। परंतु प्रभु बताते हैं कि वह अशिष्ट नहीं है, वह अमर्यादित नहीं है, वह कितना मर्यादित है। लक्ष्मण जी क्रोध भी करते हैं तो क्रोध की बागडोर अपने हाथ में लेकर के करते हैं, और हम क्रोध जब करते हैं तो क्रोध के वश में हो जाते हैं। लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं तो क्रोध को अपने वश में रखते हैं। कितना क्रोध करना, कहां तक क्रोध करना, यह तो एक कुशल अभिनेता ही कर सकता है। तो लक्ष्मण जी ऐसे कुशल अभिनेता हैं कि वे कहते हैं, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, प्रभु से कह रहे हैं यदि मैं आपका अनुशासन पालूं तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह मैं उठा डालूं और फिर यह सब कुछ मैं तोड़ दूं। कहते हैं कि को बापरो पिनाक पुराना, यह तो पिनाक पुराना है, धनुष पुराना है, यह तो इतना पुराना है, इसकी क्या बिसात है, यह तो कब टूट जाएगा। और फिर
तोरौ छत्र कदंद जिमी,
मैं इस मानो सारे संसार को कुकुर मुत्ते के छत्ते की तरह तोड़ डाल करके फेंक दे सकता हूं।
तोरौ छत्र कदंद जिमी।
और फिर उसके बाद कहते हैं,
तब प्रताप बलनाथ,
अपने प्रताप से नहीं प्रभु, अपने बल से नहीं, आपके प्रताप से, आपके बल से मैं इस सब को कुकुर मुत्ते के छत्ते की तरह तोड़ करके भस्त कर दे सकता हूँ। क्रोध में भी मानो वह अनुशासन बना है, प्रभु की कृपा का हरदम स्मरण बना हुआ है। आपकी कृपा, आपका बल, आपकी मर्यादा, मानो उसको वे कभी भूलते नहीं है, ऐसा वे कहते हैं। क्यों क्रोध हो गया लक्ष्मण जी को? क्या इसलिए कि जनक जी ने कह दिया, मैंने जान लिया कि यह मही यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, उसके कारण तो क्रोध आया, आया अवश्य, क्योंकि यहाँ पर रघुकुल मणि भगवान श्री राम बैठे थे और कह दिया जनक ने कि यह पृथ्वी से खाली हो गई, यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। पर अधिक जो क्रोध था इसका कारण यह था जो जनक ने कह दिया कि कुंवर कुंवारी रहो, बस यह जो मेरी लड़की है या मेरी कुमारी लड़की वह कुमारी ही रहेगी, उस विधाता ने उसका विवाह नहीं लिखा है, यह उनके क्रोध का कारण था। क्योंकि लक्ष्मण जी बाद में कहते भी हैं, मैं तो यही जानता था कि इतने बड़े ज्ञानी हैं जनक जी, वे जानते हैं कि उनके यहाँ महाशक्ति आई है, और ऐसे ज्ञानी जनक जी हैं कि जब हम दोनों भाइयों को सबसे पहले देखा, गुरु विश्वामित्र जी के साथ जब हम लोग आए उनकी नगरी में, आते हैं अगवानी करने के लिए महाराज श्री जनक, और देखते ही पूछते हैं कि ये सुंदर दोनों बालक कौन है ना, ये कौन है, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। और फिर उसके बाद कहते हैं,
ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा उभय बेस धरि सो की आवा।
कि जिसको ब्रह्म नेति नेति कहता है, जिसको वेद नेति नेति कहकर के पुकारता है, जिस ब्रह्म को, क्या वही ब्रह्म दो रूप धारण करके आ गया है, एक श्यामल और दूसरा गौर। तो हनुमान लक्ष्मण जी का तात्पर्य यह है कि जो जनक जी पहली ही दृष्टि में श्री राम के ब्रह्मत्व को परख लेते हैं, वे कैसे यह मानते हैं कि ये उनकी जो कन्या है सीता जी है वे कुंवारी ही रहेंगी। वे जानते हैं यह जगत जननी है, उन्हें बताया गया है और स्वयं उनको अनुभव हुआ है कि वे महाशक्ति हैं। आप जानते हैं किस प्रकार जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर की वरदक्षिणा की थी। उनके यहाँ धनुष था भगवान शंकर का, भगवान शंकर ने अपना धनुष दे दिया था जनक जी को, धनुष ही दिया, बाण नहीं दिया। इसका भी तात्विक तात्पर्य है कि यदि आपको कोई धनुष दे दे और पर बाण न दे, इसका मतलब है कि धनुष कोई काम का नहीं है, उसको तुम फेंक सकते हो, उसको तुम तोड़ सकते हो। अगर कोई धनुष के साथ बाण दे तब तो कोई सार्थकता है। क्या आप कह सकते हैं कि धनुष का उपयोग है बाण चलाने के लिए, पर आपको केवल धनुष दे दे बाण न दे तो मतलब है कि धनुष का कोई उपयोग नहीं है। जो हो, शंकर जी ने अपना धनुष दे दिया जनक जी को और जनक जी उसे रखे हुए हैं और पूजा भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि यह भगवान शंकर का धनुष है, इसके गूढ़ आध्यात्मिक तात्पर्य है, देखेंगे समय रहा तो इन दो दिनों में, आगामी दो दिनों में, कि वह धनुष किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर कहा गया धनुत्तम, मान यह तमस का अंधकार का प्रतीक है। कैसे प्रतीक है उस पर विचार करेंगे। तो अभी यह कहा जा रहा है कि जैसे शंकर जी ने दे दिया, जनक जी पूजा करते हैं, एक दिन कोई विशेष पूजा का आयोजन था, उन्होंने सीता जी से कहा कि बेटी जरा देखो जहां धनुष रखा है उसे साफ कर दो। सीता जी आती हैं, सब साफ किया पर देखा कि धनुष के नीचे में जो मिट्टी है उसमें धूल बहुत है, किसी ने साफ नहीं किया, क्योंकि कथा किंवदंती ऐसी कि उसे तो उठाया ही नहीं जा सकता था।